हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 20 एंड 21। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पदपंकज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न परा, वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबर दरुणबिंबफलधरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवी, वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, दीवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधार शिवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 20। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों को भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, एतावतालम् ननु सूचितेन गुणैरसाम्या नतिश्वायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूते यस्याङ्ग्रिरेणुं जुषति न भीप्सो एतावतालम् ननु सूचितेन गुणैरसाम्या नतिशायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूति यस्याङ्ग्रिरेणुं जुषति न भीप्सो एतावतालम् ननु सूचितेन गुणैरसाम्या नतिशायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूति यस्याङ्ग्रिरेणुं जुषत्वेन भीप्सो। शब्दात् एतावतालम् ननु सूचितेन एताव यानी इतनी दूर तक अलम यानी अनावश्यक ननु यदि तनिक भी हो तो सूचितेन वर्णन से गुणैर साम्यान अतिशायनस्य गुण यानी गुणों से असाम्य अमाप्य अनतिशायनसि अनति मतलब जिसकी बराबरी नहीं हो सकती जिसके बराबरी ना हो सके उसका हित्वा इतरान हित्वा माने छोड़कर इतरान यानी अन्य पार्थयतो विभूति पार्थयतो यानी याचना करने वालों को विभूति यानी लक्ष्मी की कृपा यस्यांग्री रेणुम यस्य माने जिनकी अंग्री यानी पैरों की रेणु यानी धूल जुष्यते सेवा करता है अनभीप्सो अनिच्छित का अनुवाद देखिए। अब यह निश्चित हो गया है कि भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी संतोषजनक रीति से कुछ भी नहीं कह सकता कुछ कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता स्तुतियों के द्वारा भी जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त कर नहीं कर पाते वही देवी भगवान की सेवा करती हैं। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता है उनकी समता करने वाला कोई भी नहीं है ना ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप से नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने में पूर्ण हैं और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं लेना देना, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी कुछ नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते हैं और उनकी प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती हैं, वे भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे अपने गर्भोदक्षायी विष्णु स्वरूप में ब्रह्मा को अपनी कमल नाभि से भौतिक संसार के प्रथम प्राणी के स्वरूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्णतया के लिए के ये कुछ उदाहरण हैं, किंतु उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार हैं, वे इतनी अचिंत्य शक्ति से पूर्ण हैं कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। श्लोक नंबर 21। अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरञ्चो प्रहृतार्हणम्ब शेषम् पुनात्यन् यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरञ्चो प्रहृतार्हणम्ब शेषम् पुनात्यन् यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरञ्चो प्रहृतार्हणम्ब शेषम् पुनात्यन् यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ। शब्दात् अथापि यत्पादनखावसृष्टम्, अथापि यानी अत, अपि यानी निश्चय ही, यत जिसके, पादनखा यानी पांव के नाखून, अवसृष्टम निकलते हुए जगत यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, विरंची ब्रह्मा जी उपहृतम एकत्रित किया, अर्हण यानी पूजा, अम्ब यानी जल, स सहित ईशम भगवान शिव जी, शेषम पुनात्यन यतमो मुकुंदात, पुनाति यानी शुद्ध करता है, अन्यतमा और कौन, मुकुंदात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त, कह कौन, को नाम लोके भगवत पदार्थ, को माना कौन, नाम यानी नाम, लोकी संसार में भगवत परमेश्वर, पद पद यानी स्थित, अर्थ योग्य। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो भगवान कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव को अर्घ्य चढ़ाने के लिए निमित्त एकत्रित किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझा रहे हैं कि ज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की धारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों से होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन इनमें से कुछ जीव भी हैं। ये जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश हैं, दो प्रकार के विस्तार यानी अंश हैं। ब्रह्मा जी सामान्यता जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीव के मध्य में मध्य माध्यम स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु या भगवान की कृपा से सेवा में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद या कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो वास्तव में भगवान कहला सके। लक्ष्मी ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं हैं, वे परमेश्वर के अंश रूप में शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी भगवान के पूजक भक्तों के चार संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष अवतरित हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथी संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत कुमार से अवतरित है। ये चारों मूल संप्रदाय आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या मुकुंद ही भगवान हैं और अन्य व्यक्ति ना तो उनके समान है ना ही उनसे बढ़कर। श्रील प्रभुपाद की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है जिसमें ऋषिगण सूत गोस्वामी से प्रार्थना किए कि हमें भगवान के विषय में श्रवण कराइए, क्योंकि भगवान के विषय में श्रवण करके ही जीव मात्र का कल्याण होगा। तो इतना सुनने के बाद सूत गोस्वामी ने कल श्लोक नंबर 18 से उत्तर देना शुरू किया। वे कहते हैं अहो वयम जन्म मृतोद्यस्म, कि मेरा जो जन्म है वृद्धानुवृत्त्या विलोम जाति, मैं तो विलोम जाति का हूँ, मिश्र जाति का हूँ, लेकिन वृद्धानुवृत्त्या जो ज्ञान में बड़े चढ़े भक्त हैं उनकी सेवा करने से दोष कुल्यमादेम विदनोति शीघ्रम, मेरे कुल का, मेरे जन्म का सारा दोष जो है वो साफ हो गया, शीघ्रम साफ हो गया, जस्ट मैंने उनके साथ संगति की और ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति से, केवल उनके दर्शन मात्र से हमारे समस्त अपराधों का क्षय हो जाता है। महत्तमानं अभिधान योग, ऐसे महात्माओं के साथ योग जब मिल जाता है तो हमारी सारी अपवित्रता नाश हो जाती है। तो फिर आगे कहते हैं कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य, उन महात्माओं का जो कि भगवान का नाम लेते हैं, उनके खाली दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर उन महात्माओं का क्या कहना जो गणतो नाम तस्य, जो उनका नाम लेने वाले हैं। महत्तम एकांत परायणस्य, जो महान भक्तों के निर्देश अनुसार, उनके आदेश अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। योनंत शक्तिर भगवान अनंत, भगवान की शक्ति अनंत है, वो भगवान स्वयं अनंत है। महत् गुणत्वात् यमनंतमाहु, उनके असीम गुण हैं और इसके कारण उनको अनंत कहा जाता है। इसी बात को आगे बता रहे हैं, वे कहते हैं एतावतालम ननु सूचितेन, एतावतालम यानी दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो ननु सूचितेन, यदि तनिक भी ऐसा है जो भगवान के वर्ण, भगवान की शक्ति का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के यश का, भगवान के वैभव का, भगवान के प्रेम का वर्णन कर सके। भगवान अनंत हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है, ये तो निश्चित हो गया कि भगवान अनंत हैं, उनके तुल्य कोई नहीं है, तो कोई भी उनके विषय में संतोषजनक रीति से कुछ कह नहीं सकता। एतावतालम ननुशोचितन, कोई भी उनके विषय में पूरा सब कुछ बता नहीं सकते, संतोषजनक यानी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपने आप को तृप्ति नहीं हो सकती है। भगवान के विषय में जितना जितना बोलते जाते हैं, जितना जितना श्रवण करते जाते हैं, उतनी उतनी तड़प बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा व्याख्या हो सकती है शास्त्रों के अनुसार कि हम बोलें और बोले बस इतना ही है भगवान का वैभव, भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य अनंत है। ये जो हम बोलते हैं ना, वो तो समझो एक छोटा सा सफुलिंग मात्र है, एक स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण 10.42 में कहते हैं, यद्यद्विभूति मत्सत्वम् श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभव। यद्यद् विभूतिमत्सत्वम्, तुम जो कुछ भी देख रहे हो, जो विभूति देख रहे हो, जो ऐश्वर्यमय देख रहे हो, जो शक्तिशाली देख रहे हो, जो जो देखने योग्य देख रहे हो, जो प्रेम करने योग्य देख रहे हो, वो सब क्या है? मम तेजो अंश संभव, मेरे असीम तेज का एक छोटा सा सफुलिंग मात्र है, मेरे महानतम ऐश्वर्य का एक स्प्लेंडर का स्पार्क है, वो छोटा सा यानी छोटी सी चिंगारी है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के गुणों का पूरी तरह से वर्णन कर सके। गुणैरसाम्यान् असाम्य, यानी कि कोई माप नहीं है भगवान के गुणों का, कोई लिमिट नहीं है, असाम्य अनलिमिटेड है, काउंटलेस काउंटलेस भगवान के गुण हैं। इसलिए अनतिशयानस्य, कोई भी भगवान के बराबरी नहीं कर सकता, कोई भगवान के विषय में पूरा बता भी नहीं सकता, तो भगवान से बड़ा बड़ा कौन हो सकता है? तो उनकी महानता का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एक अत्यंत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, इत्वेतरान् प्रार्थयतो प्रार्थयतो विभूति। विभूति कहते हैं लक्ष्मी की कृपा। हित्वेतरान् यानी बड़े बड़े देवी देवता प्रार्थयतो, सदैव भगवान श्रीमती लक्ष्मी महारानी की स्तुति करते रहते हैं, याचना करते रहते हैं बड़े बड़े देवी देवता की, लक्ष्मी महारानी आप हम पर कृपा कीजिए। हित्वे तरान, लेकिन उन सब की तरफ लक्ष्मी महारानी देखती भी नहीं है। बड़े बड़े देवता पार्थ है तो विभूति, लक्ष्मी महारानी की बहुत बड़ी सेवा करते हैं, उनकी ओर याचना करते कृपा की, लेकिन फिर भी महारानी लक्ष्मी जो है वो उनको छोड़ देती है, उनकी ओर देखती भी नहीं है। करती क्या है? यस्यांग्री रेणुम, यस यानी जिसके, अंग्री कहते हैं चरणों को, रेणु यानी धूल को, जुषते यानी सेवा करते हैं। वो बड़े बड़े देवी देवता तो उस लक्ष्मी की सेवा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, मगर उन्हें छोड़कर वो जिन भगवान के चरणों की धूल की सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी उन भगवान को अनभीप्सो, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, उनको कोई लक्ष्मी महारानी की सेवा की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी महारानी के अतिरिक्त, उनकी सेवा के अतिरिक्त भगवान जो है वो ऐसे परेशान हो जाएंगे कि अभी लक्ष्मी महारानी नहीं सेवा करेगी तो कौन मेरे चरणों की। ऐसे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो है वो उनकी सेवा करने के लिए सदैव लालायित रहती हैं, वो इच्छा कर रही होती हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां वो लाइन में खड़ी रहती हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो। तो ऐसी लक्ष्मी जिनकी बड़ी बड़ी देवी देवता भी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर वो उनकी ओर नहीं देखती, लेकिन वो भगवान के चरणों की सेवा में सदैव लगी रहती हैं, जबकि भगवान को उनकी सेवा की कोई इच्छा नहीं होती है, ना ही आवश्यकता होती है। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया हमें कि भगवान, जैसे श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान की केवल इच्छा मात्र से चलता है। ऐसा नहीं है जैसे हमको अगर घर बनाना होता है तो कितने कितने कारपेंटर्स जुटने पड़ते हैं, कितने मजदूर इकट्ठे करने पड़ते हैं, कितना सीमेंट जुटाओ, मट्टी जुटाओ, लकड़ी जुटाओ, फिर पलंग बनाओ, फर्नीचर बनाओ, किचन बनाओ। एक घर को बनाने के लिए कितनी कितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है, कितने कितने लोगों को व्यस्त करना पड़ता है, और तब कहीं जाके एक घर बनता है। और उसमें भी कहीं से कोई चीज खराब हो जाती है, कभी पानी लीक हो जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है, मतलब उसमें भी परफेक्शन नहीं होती है। ऐसा होता है ना, फिर हमें वापस लगता है कि यहाँ से काम सही नहीं हुआ, यहाँ से काम सही नहीं हुआ। लेकिन ये भगवान जो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को सिर्फ लेते लेते सांस निकालते हैं और वो ब्रह्मांड प्रिपेयर होके निकल आ जाता है, मतलब सिर्फ सांस। ऐसा नहीं है कि भगवान को उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता, नहीं कुछ नहीं, वो बस आराम से लेटे हुए हैं। कारण दक्षाय विष्णु, दक्षाय समुद्र के ऊपर शयन कर रहे हैं, मजे से लेटे हुए हैं, श्वास ले रहे हैं, और ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड मतलब पूरे यूनिवर्स निकल रहे हैं। एक हम तो एक घर की बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड ऐसे भगवान लेटे लेटे बना देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन ब्रह्मांडों के अंदर सृजन संहार और पालन करने के लिए उनको मेहनत करना है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। गर्भो दक्षाय विष्णु, अब यहाँ पर इतनी सुंदर बात बताई है श्री प्रभुपाद जी ने कि गर्भो दक्षाय विष्णु से जब ब्रह्मा जी को प्रकट होना था, तो जैसे आज अगर किसी पति को कोई संतान उत्पन्न करना होता है तो उसको अपनी पत्नी की आवश्यकता होती है, वो पत्नी के साथ गर्भधान करता है और फिर कहीं जाकर उनको 9 महीने के बाद संतान उत्पन्न होती है, ऐसा होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी को उत्पन्न करना था, लक्ष्मी की उनको कोई आवश्यकता नहीं, वो अपनी नाभि कमल से एक कमल की नाल जो निकलती है और ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं। इस यही प्रार्थना हमारा चित्रकेतु भगवान से करते हैं। भगवान से कहते हैं कि मुझे आपकी चरणों की सेवा चाहिए, मैं आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ महारानी लक्ष्मी की तरह। जिस तरह लक्ष्मी महारानी सदैव आपके चरणों की सेवा करती हैं, तो जैसे हमने श्लोक नंबर 1 में पढ़ा था, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, जन्म होना इस संसार में, हर एक वस्तु की सृष्टि और हर एक वस्तु का पालन और हर एक वस्तु का संहार, ये सब उनकी इच्छा मात्र से। चार्थेषु भिज्ञः स्वराट, वो सबके विषय में अच्छे तरीके से जानते हैं, और स्वराट हैं वो बगैर किसी की सहायता के भगवान जो है ना वो सब कर सकते हैं। तो ऐसे महाराज पृथ्वी, हाँ महाराज पृथ्वी ने बोला था कि क्योंकि आपको सृष्टि के रचना के लिए, सृष्टि की पैदा करने के लिए लक्ष्मी महारानी की आवश्यकता नहीं है ना, तो आप मुझे वो सेवा दे दीजिए जो लक्ष्मी महारानी आपकी सेवा करती हैं, और आपको तो लक्ष्मी महारानी की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर वो क्रोध भी हो जाएंगी तो आप उनको मना देना, लेकिन मुझे आपकी यही वाली सेवा करनी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सृष्टि की उत्पन्न करने के लिए आपको लक्ष्मी महारानी की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि जिस तरह से भगवान की नाभि कमल से इस भौतिक संसार के प्रथम प्राणी के रूप में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं हुआ था उनका, तो जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है, फिर भी लक्ष्मी महारानी एक क्षण के लिए भी नहीं चाहती है कि मैं भगवान की सेवा से वंचित हो सकूं। उनको केवल उनका आधार, उनका आश्रय, उनका आनंद केवल भगवान की सेवा में है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया, यह निश्चित हो गया है कि भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, और बड़े बड़े देवी देवता जिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी भी उनकी चरणों की सेवा करते हैं। तो ऐसे भगवान के अनंत गुणों का कथन करना किसी के लिए संभव नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता कि भगवान के संपूर्ण गुणों का बखान कर सके, वर्णन कर सके। ये आप मुझे बोल रहे हो कि मैं भगवान की गुणों की लीलाओं के विषय में बताऊं, लेकिन मैं तो
किसी इस गिनती में नहीं हूँ, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के विषय में संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए भगवान को ब्रह्मा जी की सहायता की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.10.9 में कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते से चराचरम। मयाध्यक्षेण, ये प्रकृति जो है वो मेरी आंख के इशारे से कार्य करती है। सूयते से चराचरम हेतु नाने व कौनते जगत ही परिवर्तित। ये पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो केवल मेरी इच्छा मात्र से हो रहा है। ये तो ब्रह्मा जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान जो है उनको निमित्त बना रहे हैं। ये अर्जुन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अर्जुन जो है वो निमित्त बन रहे हैं भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने से। वरना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इन सबको तो मैंने पहले ही मार दिया। युद्धस्व यशो लभस्व निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। ये तो मैंने पहले ही मार दिए हैं, तुम्हें केवल युद्ध करना है और यश प्राप्त करना है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की अनुकंपा है कि वो अपने भक्तों को यश प्रदान करने के लिए, उनका यश बढ़ाने के लिए उनको कुछ सेवा दे देते हैं। वरना करने वाले वो स्वयं हैं, वो स्वयं, और वो स्वयं भी करते हैं तो उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। उनको केवल इच्छा मात्र से, भगवान संपूर्ण है, उनका हर कार्य सहज तथा सम्यक रूप से नियम अनुसार चल रहा है। ऋतुओं का बदलना, दिन और रात का होना, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, वो सब भगवान ने एक नियम बनाया है, उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। और भगवान अपने में पूर्ण है और उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई है कि भले ही वो स्वतंत्र हैं, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्णता के ये कुछ उदाहरण तो हैं, परंतु ये भी याद रखना चाहिए कि वो निराकार नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे निराकार हैं, वे इतनी अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण हैं कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में संजय ने योगेश्वर कहा। जब पूरी भगवत गीता पढ़ ली, सुन ली, उसके बाद धृतराष्ट्र को कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिविजयो भूतिर् ध्रुवानीति मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जो सब कुछ कर सकते हैं, सारे चमत्कार कर सकते हैं, उनको कुछ करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उनका होना ही इस बात की दलील है, वो यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या है? तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्वानीतिर, वहाँ पर श्री है, विजय है, वहाँ पर धन है, वहाँ पर संपत्ति है, और वहाँ पर नीति है, धर्म है। जहाँ पर भगवान है वहाँ पर ही धर्म है, और जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। तो भगवान का होना जो है वो हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। और इस कलयुग में भगवान जो है वो अपने नाम स्वरूप में है। तो जहाँ पर भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान ने अपनी समस्त शक्तियाँ अपने नाम में भर दी हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। अपनी सारी शक्तियाँ जो है वो उस नाम में भर दी हैं। तो जहाँ पर भगवान का नाम है वहाँ पर क्या है? तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें। तो जो बड़े बड़े देवी देवता भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन नहीं कर सकते, तो लक्ष्मी देवी के लिए बहुत प्रार्थना करते, मगर जो लक्ष्मी उन प्रार्थनाओं को सुनकर उन देवी देवताओं की ओर आकर्षित नहीं होती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने में लगी रहती हैं, उनका उनकी कथाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं, अथापि यत्पादनखावसि सृष्टम अथापि यत् पाद नखावसिष्टम्, इसलिए इस भगवान के पाद नखाव यानी चरणों के नख की, नख का जो जल है, यानी जब भगवान वामन तीन पैर से पृथ्वी को नापा, पहले एक पैर से पूरे पृथ्वी को नापा, फिर दूसरे पैर से समस्त ब्रह्मांड को नाप रहे थे, तो सातों आकाश यानी कि ब्रह्मलोक जो है उसके ऊपर एक परत है, उसके ऊपर जो है परव्योम है, परव्योम यानी उसके आगे, यानी जैसे हमारे 14 लोक समाप्त होते हैं ना, पृथ्वी बीच में है, उसके बाद आगे जनलोक, तपलोक, महलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, उसके बाद जो ब्रह्मलोक है उसके ऊपर एक एक मतलब पर्दा सा बना हुआ है और उसके ऊपर कारण दक्षाई विष्णु है और वहां से जो है आध्यात्मिक जगत स्टार्ट होता है। तो वहां पर स्पर्श हुआ जब भगवान का चरण, तो वहां पर एक थोड़ा सा होल हो गया और उसमें से जल निकला, कारण दक्षाई विष्णु जहां पर शयन करते हैं वहां का थोड़ा सा जल बाहर टपका और ब्रह्मा जी ने क्या किया, क्योंकि वो चरण भगवान के चरण कमलों से स्पर्श किया हुआ जल था, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडलों में धारण कर दिया। और जब उनको अपने कमंडलों में धारण कर दिया तो उस समय से शिव जी की ये इच्छा थी कि मैं अपनी शुद्धि के लिए इस जल को धारण करना चाहता हूँ, इच्छा थी उनकी बड़ी। और फिर जब गंगा जी को इस पृथ्वी पर आना था, जब भागीरथ महाराज ने बहुत बहुत तपस्या की, तब गंगा जी ने शिव जी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए यह शर्त रखी थी कि मैं, क्योंकि डायरेक से जब पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, इसलिए क्योंकि मेरे वेग को सहन करना बहुत कठिन है, तो किसी परम वैष्णव जो मेरे इस वेग को स्वीकार कर सके या सहन कर सके उसके थ्रू जो है मैं धरती पर आऊंगी। तो शिवजी की अनेक जन्मों से, बहुत बहुत समय से ये इच्छा थी कि मैं उस जल से अपने आप को शुद्ध करूं। ब्रह्मा जी चाहते थे लेकिन एक लीला करनी थी, तो फिर उस जल को पहले शिव जी ने अपने जटाओं में बहुत समय तक कैद किया, बहुत समय तक रख दिया, क्योंकि उनको इतना आनंद था उन भगवान के शरण कमलों से स्पर्श किए हुए इस जल से, वो आनंद लेना चाहते थे, इसलिए उनको अपनी जटाओं में कैद किया और फिर धीरे धीरे बहुत ही शांत रीति से उस गंगा जल को पृथ्वी पर हम सब पति जीवों का कल्याण करने के लिए भेजा। तो उसी जल की बात कर रहे हैं, तथापि यत्पाद नखावसिष्टम् जगत विरंचो प्रहृतानमम्भ, जगत यानी पूरे ब्रह्मांड को विरंची ब्रह्मा जी को कहते हैं, जगत विरंच उपहृतम यानी एकत्रित कर दिया, ब्रह्मा जी ने एकत्रित कर दिया और उस जल अम्ब कहते हैं जल को, स ईशम यानी भगवान श्री कृष्ण भगवान सॉरी स ईशम ईश कहते हैं शिव जी को, विरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने एकत्रित किया शिव जी को शुद्ध करने के लिए, है ना, पुनाति उनको शुद्ध करने के लिए। अन्यतम तो आगे कहते हैं, शेषम पुनात्यन यतमो मुकुंदात, वो शिवजी को भी पवित्र करने वाला ऐसा मुकुंद के चरणों का जल है, को नाम लोके भगवत पदार्थ, बता दो सही उनके अतिरिक्त कोई ऐसा है जिसे भगवान कहा जा सके, वो जिनके चरण कमलों की नख से स्पर्श किया हुआ जल जो है वो ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में धारण करते हैं और शिव जी अपनी जटाओं में लेकर अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने आप को पवित्र समझते हैं। तो शिव और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी जिनके चरणों की सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं, को नाम लोके भगवत पदार्थ, तो क्या इसके अतिरिक्त और कोई है जिसको भगवान कहा जा सके। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि कोई भगवान है तो वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई किसी की भी पूजा करो आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी की भी पूजा करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो अवश्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं है, कोई हो नहीं सकता। इसीलिए सूत गोस्वामी अपनी कथा को प्रारंभ करने से पहले ही ये बात को बोल रहे हैं, को नाम लोके भगवत पदार्थ। भला कौन है जिसको भगवान कहा जा सकता है, उस श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो भगवान कहलाने के योग्य है। वास्तव में भक्तों, अज्ञानी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अनेक देव होते हैं, किसी की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान अद्वितीय हैं। इसे वेद कहता है, न तत् समा अधिको कुतिन्य, उनके समान कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर भला कौन हो सकता है। और भगवान जो है वो अपना विस्तार करते हैं, और इसी की पुष्टि जो है वेदों में की गई है कि वो भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं। श्री प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि कुछ भगवान के अंश अवतार हैं, कुछ अंशांश अवतार हैं, कुछ भगवान के पूर्ण अंश के अवतार हैं। जैसे ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के अंश अवतार हैं, है ना, उनके अंदर वो ईश तत्व नहीं है, वो जीव तत्व हैं। लेकिन शिव जी जो हैं वो शिव तत्व हैं, और जैसे नरसिंह आदि भगवान के जो अवतार हैं वो ईश तत्व हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी जो भगवान के तुल्य नहीं हैं, उनसे बढ़कर भला कोई और कैसे हो सकता है। लक्ष्मी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। हमने देखा लक्ष्मी महारानी सदैव भगवान की सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए जल के लिए लालायित रहते हैं, और शिव जी सदैव उनकी आराधना में समाधि में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अधिक शक्तिशाली हो ही नहीं सकता जो वास्तव में भगवान कहलाया जा सके। लक्ष्मी ब्रह्मा तथा शिव स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के अंश रूप में ही शक्तिमान है। उनको सारी शक्ति जो है वो भगवान से ही प्राप्त होती है। भगवान जब चाहे जिस भी जीव को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु कोई भी जीव चाहे कितनी ही शक्ति प्राप्त कर सके, कितना ही धन, कितना ही ऐश्वर्य, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, वो भगवान के समान नहीं हो सकता। भगवान एक अकेला कृष्ण है, और उसी की सेवा करने से हमारा कल्याण हो सकता है, उन्हीं के विषय में श्रवण करने से हमारा कल्याण हो सकता है, उन्हीं से प्रेम करने से हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए कथा को आरंभ करने से पहले सूत गोस्वामी बताने जा रहे हैं कि मैं कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ सुनकर आपका कल्याण होने वाला नहीं। वास्तव में वेद व्यास जी ने पहले ही हमें श्लोक नंबर 2 में बता दिया, 1.1.2 में बताया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव का मतलब होता है कि जिसमें कपट हो। तो वास्तविक जो कपट रहित जो केतव जो नहीं है वो क्या है, तो शास्त्र कहता है द्विसंग कहिए केतव आत्मवंदना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। अगर कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ सुन रहे हो तो वो सब केतव है, वो सब मतलब स्वीकार करने के योग्य नहीं है, वो सकाम विचार से प्रच्छन्न है। तो इसलिए यदि हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है तो कृष्ण के विषय में श्रवण करने से, और वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। यही जो है वो शास्त्र का, वेद व्यास जी जिन्होंने सारे शास्त्रों को रचा है उनका यही कथन है कि यदि जीव को अपना कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवतम महापुराण को ही श्रवण करे। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हम उसी श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्रेम से सुनते हो। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को सदैव यूं ही अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।